प्रथम उल्लास काव्य प्रकाश का प्रतिपाद्य विषय मंगलाचरण नियति कृत नियम रहिताम रादैक मईम नन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मादधति भारती कवेर जयति। नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित केवल आनंद मात्र स्वभाव वाली काव्य रूपी जगत का निर्माण करने वाली कवि की भारती कोष्ठक वाणी सरस्वती कोष्ठक बंद सर्वोत्कृष्ट शालिनी है। प्रारब्ध कार्य की निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति के लिए काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट ग्रंथ के आरंभ में अपने इष्ट देवता वाणी को नमस्कार करते हैं। उक्त मंगलाचरण में ग्रंथकार ने यह दिखलाया है कि ब्रह्मा की सृष्टि निर्मिति की अपेक्षा कवि भारती की रचना सृष्टि कहीं अधिक उत्कर्षशाली है, क्योंकि ब्रह्मा की कृति की अपेक्षा इसमें चार विशेषताएं जो व्यतिरेक मुख से प्रदर्शित की गई हैं, वे सहृदय हृदयों को सर्वदा प्रतीत होती हैं। एक, सृष्टि के विषय में विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न मत हैं। मीमांसक सृष्टि का मूल कारण कर्म कोष्ठक धर्मा धर्म विशेष कोष्ठक बंद को मानते हैं, तो सांख्य दर्शन सृष्टि का मूल कारण सत्व रज व तमोगुण स्वरूपा प्रकृति को मानता है और न्याय दर्शन सृष्टि का मूल कारण परमाणु को मानता है, पर ये सब नियतिकृत नियम से सहित हैं, नियतिकृत नियम से रहित हैं, पर कवि की सृष्टि नियतिकृत नियम से रहित है। कवि की सृष्टि में ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा यह पहली विशेषता है। कहने का अभिप्राय यह है कि नियति शब्द के यहाँ दो अर्थ हैं, नियम्यन्ते सौरभादयो धर्माः अनेयेति नियतिर साधारणो धर्मः पद्मत्वादीक रूपः, अर्थात जिसके द्वारा सौरभ आदि धर्मों का नियंत्रण किया जाता है वे पद्यत्वादि रूप असाधारण धर्म नियति पद से कहे जाते हैं। उसके द्वारा किया गया नियम है यत्र पद्मत्वम तत्र सौरभ विशेषः, जहाँ पद्मत्व होता है वहाँ विशेष प्रकार का सौरभ होता है। इस प्रकार की व्याप्ति को नियतिकृत नियम कहा जाता है। ब्रह्मा की सृष्टि इस नियतिकृत नियम से युक्त है क्योंकि उसकी सृष्टि में इस प्रकार व्याप्ति पाई जाती है, परंतु कवि की सृष्टि में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है क्योंकि आनंद वर्धनाचार्य ने कवि को स्वयं प्रजापति कहा है और काव्य जगत को कवि का संसार कहा है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही यथा अस्यै रोचते विश्वम तथेदं परिवर्तते। इस काव्य सृष्टि में कवि के लिए कोई बंधन नहीं है। यहाँ कांता के मुख कमल में भी कवि प्रतिभा से सौरभ उद्भासित हो जाता है। नियत शब्द का दूसरा अर्थ अदृष्ट या धर्माधर्म है। ब्रह्मा की सारी सृष्टि अदृष्ट के सिद्धांत पर स्थित है। प्राणियों के पूर्वकृत धर्माधर्म के निमित्त तदनुसार सुख दुख रूप फल को भोगने के लिए स्वर्ग नरक आदि सृष्टि का निर्माण होता है, परंतु कवि की सृष्टि इन सब बंधनों से परे है। कवि केवल अपनी कल्पना के बल पर अपने पात्र को स्वर्गीय ऐश्वर्य से संयुक्त करा देता है, उसके लिए देहांतर या अपूर्व देह की आवश्यकता नहीं है। अतः कवि सामर्थ्य ब्रह्मा के सामर्थ्य से कहीं अधिक है। दो, कवि सृष्टि की दूसरी विशेषता यह है कि वह आनंदमय है, जबकि सांख्य दर्शन के अनुसार यह संसार सुख दुख मोहमय है, क्योंकि इस संसार का मूल कारण प्रकृति है और वह सत्व रजतमो गुण स्वरूपा है। कहा भी है सत्व रजतमसाम साम्यावस्था प्रकृति कारण गुणा कार्य गुणानारभन्ते। इस नियम के अनुसार प्रत्येक जागतिक पदार्थ सत्व रज और तमोगुण के कार्य स्वरूप सुख दुख मोह वाला होगा। काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका की व्याख्या प्रभा में इस बात का और भी स्पष्टीकरण किया है। एकस्या एव कामिन्या कंचित प्रति सुखात्मक सत्व समुद्भूतत्वम सपत्नीम प्रति सुखात्मक रजः समुद्भूतत्वम स्वमलभ मानम प्रति तमोरूप मोह समुद्भूतत्वमिति रित्या स सर्व पदार्थानां सुख दुख मोहात्मकत्वमिति सांख्य मतानुसारेण एदम्। अर्थात किसी पदार्थ में किसी के प्रति सत्वगुण समुत्कट तो उसके लिए वह सुख स्वरूप है, यदि रजोगुण है तो वह दुख स्वरूप है, और यदि तमोगुण समुत्कट है तो वह मोह स्वरूप है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ सुख दुख मोहात्मक है, परंतु कवि की सृष्टि में दुख का अस्तित्व ही नहीं है। उसकी सृष्टि में तो महाकवि भवभूति के अनुसार अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्। अपनी सहृदय तावश या कवि प्रतिभा जन्य परिताप स्फुरित स्वयं प्रस्तर अभाव में प्रस्तर भी आंसू गिराते हैं और वज्र का भी हृदय पिघल जाता है। पर यही पदार्थ अपने पाठक को कितना आनंद प्रदान करते हैं, इसको तो केवल सहृदय ही जानता है। कवि की कृति में तो रुदन और क्रंदन से भरा हुआ करुण भी आनंदानुभूति स्वरूप ही है। साहित्य दर्पणकार का भी यही कहना है, करुणा दावपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेत सामनुभव प्रमाणम तत्र केवलम। इसलिए कवि की सृष्टि लादयकमयी केवल सुखमयी है। कवि सृष्टि की तीसरी विशेषता है इसका अनन्य परतंत्रा होना, अर्थात वह कवि की प्रतिभा के सिवाय और किसी के परतंत्र नहीं है। जबकि ब्रह्मा की सृष्टि परमाणु आदि उपादान कारण और ईश्वर इच्छा द्वारा जो परमाणुओं में स्पंदनादि कर्म है, ऐसे निमित्त व असमवायी कारणों के परतंत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय दर्शन के अनुसार सृष्टि का मूल उपादान कारण परमाणु है। परमाणुओं में ईश्वर इच्छा वश जब आपस में स्पंदन होता है तो परमाणु द्वय संयुक्त आगे द्वयणु आदि की उत्पत्ति होती है, पुनः तीन द्वयणुओं द्वारा रस रेणु, इस प्रकार क्रमशः स्थूल पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पर यह सब तभी हो सकता है जब परमाणुओं के स्पंदन निमित्त ईश्वर इच्छा हो, और ईश्वर इच्छा तत्त्व प्राणियों के धर्माधर्म अदृष्ट पर निर्भर है। न तो वह स्वेच्छा परमाणुओं का ही निर्माण कर सकता है और न बिना प्राणियों के अदृष्ट को देखे स्पंदन आदि व्यापार में ही समर्थ है। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि प्राणियों के पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म ही एकमात्र उनके भोगानुकूल परमाणुओं के निर्माण में तथा उनके आरंभ के कारण है। तदनुकूल पुनः ब्रह्मा को सृष्टि करनी पड़ती है। इसलिए लिखा है कि ब्रह्मा की परमाणुवादी उपादान सामग्री के परतंत्र है, पर प्रतिभाशील कवि के विषय में इतनी झंझट नहीं है। ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि की चौथी विशेषता यह है कि ब्रह्मा की सृष्टि केवल मधुर अम्ल लवण कटु कषाय और तृतीय छह रस ही हैं। ये भी सभी रस सबके लिए प्रिय नहीं है, पर कवि की सृष्टि में श्रृंगार आदि नौ रस है, जैसा की कहा है नवरस रुचिराम इत्यादि। एक तो ये संख्या में अधिक है, दूसरे सभी हृदय हैं, सभी आनंद स्वरूप हैं। इसलिए भी कवि सृष्टि नवरसा तथा रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट है। अतः इस मंगल श्लोक में उपमान भूत ब्रह्म सृष्टि की अपेक्षा उपमेय भूत कवि सृष्टि में उत्कर्ष की प्रतीति होती है। इसलिए यहाँ व्यतिरेकालंकार व्यंग है, पुनश्च शिल्प के उत्कर्ष मुख से शिल्पी के उत्कर्ष रूप वस्तु की भी अभिव्यंजना होती है। पर्यंत में भारतीय कवि जयति इत्यादि पदों के द्वारा जहाँ कवि का काव्य रूप भारतीय के प्रति अथवा वाणी के प्रति जन्य जनक भाव संबंध है, और दूसरे पक्ष में आराध्य देवता सरस्वती के प्रति आराध्य आराधक संबंध है। पुनश्च ग्रंथकार का वाणी की अधिष्ठात्री भारती देवी सरस्वती के लिए नमस्कार का आपेक्ष होगा, अर्थात व्यंजना वृत्ति द्वारा सरस्वती के प्रति ग्रंथकार का नमन अभिव्यक्त है। अतः मम्मट निष्ठ भारती विषयक भाव के अभिव्यक्त होने से भाव ध्वनि भी है। भगवती श्रुति भी उस अखंड ब्रह्मांड नायक ईश्वर को कवि के नाम से पुकारती है, न तो उसे शाब्दिक कहती हैं और न तार्किक। इस जगत का निर्माता तथा नियंता न वैयाकरण कहा गया है और न नैयायिक, परंतु कहा गया है कवि। कवीर मनीषी परिभू स्वयंभू, इत्यादि उपनिषद वाक्य इसके यथार्थ पोषक हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में कवि का आदर सर्वतोभावेन विराजमान है। यह कवि के लिए गौरव की बात है। स्तोतुम प्रवित्ता स्तुतिरीश्वरम ही न शाब्दिकम प्राह न तार्किकम वा ब्रूते ही तावत् कविरित्यभिक्षणम काष्ठा परासा कविता ततो नः। काव्य का प्रयोजन। संसार में किसी भी कृति का कोई न कोई प्रयोजन अथवा उद्देश्य अवश्य ही होता है। अतः कवि की कृति अर्थात काव्य रचना में भी कोई न कोई प्रयोजन अंतर्निहित अवश्य होगा, जिसका प्रतिपादन अवश्य है। अन्यथा यदि प्रयोजन का प्रतिपादन ग्रंथ के प्रारंभ में न किया जाए तो पाठकों को अभिलषित वस्तु अर्थात इष्ट साधनता का ज्ञान नहीं होगा। उस अभिलषित के ज्ञान के अभाव में पाठकों की ग्रंथ पढ़ने में प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः ग्रंथकार प्रयोजन के अभिमुख प्रवृत्ति दिखलाते हुए काव्य के प्रयोजन का निरूपण करते हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य का निर्माण यश की प्राप्ति के लिए है। जैसे कालिदास तथा भवभूति ने अपने काव्यों के द्वारा ही विपुल कीर्ति को अर्जित किया, कालिदास और भवभूति आदि महाकवियों को इस धराधाम को छोड़े हुए न मालूम कितने वर्ष बीत गए, पर उनके काव्य ग्रंथ उनका विमल यश अभी तक फैला रहे हैं। रस सिद्ध कवियों का यश चिरस स्थायी होता है। इस बात को महामनीषी महाराजा भर्तृहरि ने कितने सुंदर ढंग से कहा है। जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविश्वराः नास्ति एषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। धन प्राप्ति के निमित्त भी काव्य रचना की जाती है। कविगण अपने आश्रयदाता की कीर्ति का गुणगान किया करते थे, उसके फलस्वरूप उन्हें उपहार में काफी धनराशि मिलती थी। धावक तथा बाण ने भी अपने आश्रयदाता श्री हर्ष से काव्य रचना द्वारा अतुल संपत्ति प्राप्त की। तात्कालिक इतिहास इसका साक्षी है। व्यवहार ज्ञान कराने के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। काव्य के द्वारा ही हमें राज दरबारों का और तत्संबंधी मंत्री अमात्यादियों के व्यवहार का उचित ज्ञान होता है। और भी काव्य के अनुशीलन से ही हम किसी युग विशेष के लोगों का या समाज का आचरण तथा व्यवहार भली भांति जान सकते हैं। चार, अमंगल का निवारण या शिवेतर क्षति के लिए भी काव्य का निर्माण किया जाता है। कवि अपनी रचना द्वारा कभी विशिष्ट देवताओं की स्तुति करता है, जिसे प्रसन्न होकर वे देवता रचयिता के अमंगल अथवा संकट को दूर कर देते हैं। साहित्य में इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। सातवीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि मयूर भट्ट कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, उन्होंने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति के लिए भगवान भास्कर की स्तुति में सूर्य शतक नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। मयूर की इस भव्य स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर ने उन्हें कुष्ठ रोग से निवृत्त कर दिया। अन्य कवियों के विषय में भी ऐसी ही कथाएं प्रचलित हैं। पांच, इन प्रयोजनों में सद्यः परमानंद की प्राप्ति ही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। काव्य पाठ में तल्लीन हुआ पाठक कभी अलौकिक आनंद का अनुभव करता है। इस समय वह सांसारिक प्रपंच से जल में कमल की भांति कुछ पृथकता रहता है, अर्थात उस समय पाठक सहृदय को किसी अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। यह आनंदानुभूति ही काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूति प्रयोजन है। छ, कांता के समान उपदेश दान भी काव्य के मुख्य प्रयोजनों में अन्यतम है। यह कांता समित उपदेश राजाज्ञा के तुल्य शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रों से है। और मित्र के तुल्य अर्थ प्रधान पुराने इतिहास आदियों से विलक्षण भावना प्रधान होता हुआ सरस तथा मधुर शब्द द्वारा असन मार्ग में स्थित व्यक्ति को रामादि की तरह आचरण करना चाहिए, न कि रावण की तरह। इस प्रकार के उपदेश से सन्मार्ग की ओर अभिमुख करा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उपदेशक शब्द तीन प्रकार के होते हैं, प्रभु सम्मित, मित्र सम्मित तथा कांता सम्मित शब्द। प्रभु सम्मित शब्द वेदादियों वाक्य हैं, वेदादि वाक्य हैं जो राजाज्ञा की तरह हैं, इनको अक्षरशः पालन करना पड़ता है और इनके शब्दों को जरा भी इधर उधर नहीं किया जा सकता। अर्थात शब्दावली या वाक्य विन्यास के अनुपूर्वी को किसी स्थिति में भी शिथिल नहीं किया जा सकता है। वेद वाक्यों का अन्यथा उच्चारण में या आज्ञा न मानने में एक प्रत्यवाय नामक दोष लग जाता है। बिना किसी ननुनचक किए आज्ञा पालन करना और उसी क्रम से उच्चारण करने में वेद पढ़ने का पुण्य। अतः वेदादि वाक्य शब्द प्रधान है, दूसरे उपदेशक शब्द है मित्र सम्मित। मित्र अपने मित्र को उचित कार्य करने के लिए तथा अनुचित कार्य के परित्याग के लिए उपदेश करता है, पर मित्र का उपदेश राजाज्ञा या वेदवाक की तरह उसे उस कार्य के अनुष्ठान के लिए मजबूर भी नहीं करता और न इस उपदेश के शब्द में ही प्रधानता रहती है अपितु अर्थ में इसका तात्पर्य रहता है। यह शैली इतिहास पुराण की शैली है। इसी शैली को ग्रंथकार ने सुहृत सम्मित या मित्र तुल्य उपदेश कहा है। इन दोनों प्रकारों से भिन्न काव्य की उपदेश शैली का नाम है। कांता सम्मित शब्द या कांता के समान उपदेश दान, इस प्रकार के उपदेश में शब्द व अर्थ दोनों ही अप्रधान हो जाते हैं अपितु रसांग भूत जो व्यंजना व्यापार, इसी व्यापार की महिमा से सरसता पूर्ण उपदेश पाठक व श्रोता के चित्त को एकाएक आकृष्ट करके सत्कार्य की ओर प्रवृत्त करा देता है। अन्य शास्त्रों से यही काव्य का वैशिष्ट्य है। विभिन्न धाराएं काव्य के प्रयोजन के प्रसंग में विभिन्न विद्वानों की अनेक तरह की धारणाएं हैं। संक्षेप में दिग्दर्शन किया जाता है। आचार्य वामन के मत में काव्य इष्ट अहलौकिक तथा अदृष्ट पारलौकिक दोनों तरह के फल को देता है। जीवन काल में आनंद और मृत्यु के बाद यश देता है। अर्थात काव्य रचना की प्रतिष्ठा को यश प्राप्ति का मार्ग कहा है। काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् काव्य सत चारु दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात् अदृष्टम प्रयोजनम कीर्ति हेतुत्वात् प्रतिष्ठां काव्य बंधस्य यशसः सरणि विदुः इत्यादि। वक्रोक्ति जीवितकार आचार्य कुंतक की सम्मति में काव्यामृत का रस उसको काव्य को समझने वाले सहृदयों के अंतःकरण में चतुर्वर्ग रूप फल के आस्वाद से भी बढ़कर चमत्कार उत्पन्न करता है। आगे स्वयं उन्होंने इसके अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहा है, जो चतुर्वर्ग फल प्रकृष्ट पुरुषार्थ होने के कारण सब शास्त्रों के प्रयोजन रूप में प्रसिद्ध है, वह भी इस काव्यामृत रस की चरवणा के चमत्कार की कला मात्र के साथ भी किसी प्रकार की बराबरी नहीं कर सकता है। सुनने में कटु, बोलने में कठिन और समझने में मुश्किल आदि अनेक दोषों से दुष्ट और पढ़ने के समय में ही अत्यंत दुखदायी शास्त्र संदर्भ है। पढ़ने के साथ ही अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाले काव्य की बराबरी किसी प्रकार भी नहीं कर सकता है। यह बात अर्थापत्ति प्रमाण से प्रतीत होती है। अतः शास्त्र कड़वी औषधि के समान अविद्यारूप व्याधि का नाश करता है और काव्य आनंददायक अमृत के समान अज्ञान रूप रोग का नाश करता है। चतुर्वर्ग फला स्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेनांतर चमत्कारो वितन्यते। अयम अभिप्राय यो असौ चतुर्वर्ग फला स्वादः प्रकृष्ट पुरुषार्थतया सर्वशास्त्र प्रयोजनत्वेन प्रसिद्ध सोऽप्यस्य काव्यमृत चर्वण चमत्कार कला मात्रस्य न कामपि साम्य कलनाम कर्तुमर्हति दुःशव दुर्भण दुरधिगमत्वादि दोष दुष्टो अध्ययनावसरः एव सुदुःसह दुःखदायी शास्त्र संदर्भस्त काल कल्पित कमनीय चमत्कृतेः काव्यस्य न कथञ्चिदपि स्पर्धाम् अधिरोहति त्येदतप्यर्थो विहितं भवति। कटुकौषधवच्छास्त्रम विद्या व्याधिनाशनम् आह्लाद्यामृतवत् काव्यम् विवेक गदापहम्। आचार्य भामह ने काव्य फलो निरूपण करते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम्। ये फल भामह ने केवल काव्य रचना करने वाले कवि के लिए ही कहे हैं, न कि पाठक के लिए, परंतु कीर्ति को छोड़कर अन्य सभी फल तो पाठक को भी प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में कुछ पाठ परिवर्तन के साथ इस श्लोक को रखा है, साधु काव्य निबंधनम की जगह पर साधु काव्य निषेवणम यह पाठ रखा है। मम्मट की सदेह परा निवृत्ति ही कुंतक की अंत चमत्कार है, यही आनंदानुभूति काव्य का परम प्रयोजन है। भारतीय दर्शन के अनुसार भी इसी परम पुरुषार्थ आनंदावाप्ति स्वरूप मोक्ष के लिए ही सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, पर यह सभी तभी संभव है जब व्यक्ति प्रपंच परांग मुख रहे या सांसारिक पदार्थों में आसक्ति छोड़ दे। उपनिषदों में लिखा है कि मानव की तीन ऐषणाएं होती हैं, एक पुत्र ऐषणा, दो वित्त ऐषणा और तीन लोक ऐषणा। अन्य शब्दों में इन्हें काम, अर्थ और धर्म कह सकते हैं। यही संसार में समस्त मानव प्रवृत्तियों की मूल मानी जाती है, परंतु इन तीन पुरुषार्थों के अतिरिक्त एक मोक्ष नाम का परम पुरुषार्थ भी है, जहाँ आत्मा की साक्षात अनुभूति कलात्मक चिंतन या रसात्मक प्रेरणा द्वारा होती है। इसी स्थिति की प्राप्ति के लिए यावत कला, यावत शास्त्र, यावत काव्य निरंतर प्रवृत्त है। इसी के लिए कवियों की काव्य में प्रवृत्ति कभी कभी शांत सुखाय भी होती है। इसी आत्मा को जानना ही भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का सर्वश्रेष्ठ फल है। आत्मानं विजानहि इति। काव्य का कारण। काव्य की रचना करने वाले व्यक्ति को कवि कहते हैं। राजशेखर के अनुसार कवि शब्द की निष्पत्ति क व्रीवर्णे इस धातु से ई प्रत्यय लगने से हुई है। कवि का अर्थ वर्णनकर्ता अर्थात रस भावादि का विमर्शक इस प्रकार लोकोत्तर वर्णा में निपुण कवि के कर्म को काव्य कहते हैं। यश प्रवृत्ति फल से संपन्न काव्य सर्वथा उपादेय व उपमेय है। इसी के समुल्लास के लिए आचार्य मम्मट उपायों का वर्णन करते हैं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतु सदुद्भवे। काव्य के समुल्लास उद्भव में शक्ति प्रतिमा अर्थात कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष और लोक व्यवहार शास्त्र एवं काव्यादि के पर्यालोचन से व्युत्पत्ति निपुणता और काव्यज्ञ विद्वानों की शिक्षा का अभ्यास, ये तीनों शक्ति निपुणता व अभ्यास सम्मिलित रूप से कारण हैं। इति हेतु तदुद्भवे में हेतु न तु हेतवः, ऐसी व्याख्या वृत्ति में की है। इसका अभिप्राय यही है कि यहाँ काव्य की उत्पत्ति में उक्त शक्ति निपुणता अभ्यास की सम्मिलित हेतुता है, न कि पृथक पृथक। अतएव हेतु शब्द में एक वचन का ही प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया। अर्थात जैसे त्रिड़ से, मणि से व अरणि से सहायता सहायांतर निरपेक्ष रूप में अलग अलग अग्नि रूपी कार्य उत्पन्न होता है, वैसे यहाँ सहायांतर निरपेक्ष काव्योत्पत्ति कार्य नहीं होता। इस प्रकार के हेतु जो पृथक रहकर कार्योत्पत्ति के कारण होते हैं, उनमें त्रिडार डीमणि न्यायचरितार्थ होता है, परंतु यहाँ काव्योल्लास शक्ति निपुणता व अभ्यास की सम्मिलित हेतुता होने के कारण दंड चक्र चीवरादि न्यायचरितार्थ होगा। अर्थात घट रूपी कार्य में जैसे दंड चक्र व चीवर, ये सभी कारण अपेक्षित हैं, इनमें से एक की भी अनुपस्थिति वांछनीय नहीं होती, उसी प्रकार काव्योत्पत्ति कार्य में भी उक्त तीनों हेतुओं की सम्मिलितावस्था अपेक्षित है। इनमें एक की भी यदि अनुपस्थिति हुई तो अनुपहसनीय काव्य का निर्माण नहीं हो सकता। यही हेतु इस एक वचन का स्वारस्य है। काव्य की कारणता के विभिन्न पक्ष। संस्कृत के आलोचना शास्त्र में काव्य की कारणता के प्रसंग में अनेक प्रकार के मत मतांतर दिखाई देते हैं। अधिकतर आचार्य कारण त्रितय पक्ष के ही समर्थक दिखाई देते हैं, पर उनके कारणों की संज्ञा में केवल भेद मालूम पड़ता है। आचार्य दंडी के मत में भी प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान व निरंतर अभ्यास ही काव्य की साधना है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतंच बहु निर्मलम अमंदश्चाभियोगश्च कारणम काव्य संपदः। आचार्य वामन भी इस विषय में दंडी के ही अनुयायी हैं। वे प्रतिभा शब्द को प्रतिभानम शब्द से कहते हैं और इसी को कवित्व का बीज मानते हैं। यह प्रतिभा या प्रतिभान जन्म जन्मांतर का संस्कार विशेष है। इसके अभाव में कवित्व का स्फुरण ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त वे लोक वृत्त, लोक व्यवहार तथा प्रकीर्ण काव्यत्र वृद्ध सेवा को भी आवश्यक मानते हैं। लिखा भी है, लोको विद्या प्रकीर्णंच काव्यांगानि। इनके सहायक कारण है चित्त की एकाग्रता, विविक्त देश से वित्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः 4 बजे का समय और पदो अवापो द्वाप अर्थात पदों का परिवर्तन, काव्य के परिपाक के लिए उचित पदों का विन्यास व अनुरूप पदों का अपसारण पुनः उनका निरीक्षण भी आवश्यक है। आधानोद्धरणे तावत् यावत् दोलायते मनः पदस्य स्थापिते स्थैर्ये हन्त सिद्धा सरस्वती। यत् पदानि त्यज्यन्ते व परिवृत्ति सहिष्णुताम् तम् शब्दन्यास निष्णाताः शब्द पाकम् प्रचक्षते। आचार्य रुद्रट ने भी काव्य कारणों के प्रसंग में प्रतिभा व्युत्पत्ति व अभ्यास को एक साथ कारण माना है। प्रतिभा के स्थान पर वे शक्ति का प्रयोग करते हैं और उनका लक्षण भी प्रस्तुत करते हैं। एकाग्रचित होने पर अर्थों का जहाँ अनेक प्रकार से स्फुरण होता है, कमनीय पद कवि के सामने स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, उसे शक्ति या प्रतिभा कहते हैं। उनके शब्दों में शक्ति का लक्षण यह है, मनसि सुसमाधिनी सदा विस्फुरण मने कथा विधेयस्य अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्ति। आचार्य आनंदवर्धन की सम्मति में व्युत्पत्ति तथा प्रतिभा दोनों में प्रतिभा ही श्रेयस्कर है। शास्त्र की व्युत्पत्ति न रखने वाला कवि अपने काव्य में अनेक दोषों का संपादन कर बैठता है। प्रतिभा इन समस्त दोषों को दूर कर देती है। प्रतिभा के प्रबल समर्थक आनंदवर्धनाचार्य की यह उक्ति अत्यंत स्पष्ट है, अभ्युत्पत्ति कृतो दोष शक्त्या संव्रीयते कवेह यस्तो शक्ति कृतस्तस्य भट्टितेवावभासते। आचार्य कुंतक के मत में कवि का स्वभाव ही काव्य का मूल कारण है। स्वभाव के अनुसार ही कवि की व्युत्पत्ति होगी और तदनुसार ही कवि का अभ्यास भी होगा। व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तो केवल प्रतिभा के परिपोषक मात्र हैं। वस्तुतः काव्यबंध तो कवि की स्वभाव पर आश्रित है। यद्यपि कुंतक ने स्वतंत्र काव्य हेतुओं पर विचार नहीं किया, फिर काव्य मार्ग के प्रसंग में वे कवि स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कवि स्वभाव भेद निबंधत्वेन काव्य प्रस्थान भेद समंजसताम गाहते सुकुमार स्वभावस्य कविस्तथा विधैव सहजा शक्ति समुद्भवति शक्ति शक्ति मतोरभेदात् तथा च तथा विध सौकुमार्य रमणीयां व्युत्पत्तिमावधनाति। राजशेखर ने लिखा है कि श्यामदेव नामक आलंकारिक के मत में काव्य कर्म में सबसे अधिक सहायक वस्तु समाधि है, अर्थात चित्त की एकाग्रता। आचार्य मलंग अभ्यास को ही अधिक उपयोगी मानते हैं, परंतु राजशेखर का मत उन दोनों से भिन्न है। वे शक्ति को ही काव्य कला के उन्मिलन में प्रधान हेतु मानते हैं। समाधि तथा अभ्यास तो शक्ति के उद्भासक मात्र हैं। काव्य कला के उन्मिलन में साक्षात हेतु तो शक्ति ही है। पंडित राज जगन्नाथ भी केवल प्रतिभावादी हैं। उनके शब्द इन प्रकार हैं, तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। प्रतिभा का लक्षण करते हैं काव्य रचनानुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति और उस प्रतिभा में रहने वाली एक प्रतिमात्व जाति विशेष है, अर्थात काव्यनिष्ठ कार्यता के प्रति समवाय संबंध से अविच्छिन्न प्रतिभा में रहने वाली जो कारणता है वह किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न रहेगी। अतः प्रतिभा वृत्ति कारणता भी प्रतिभा धर्म से अवच्छिन्न होती रहेगी, क्योंकि यह नियम है कि जो कारणता होती वह किंचित धर्म अवच्छिन्न होती है। अतः प्रतिभा में रहने वाली कारणता प्रतिभात्व धर्म अवच्छिन्ना होगी, इसलिए प्रतिभा को जाति विशेष कहा है। इस प्रतिभा के फिर दो कारण मानते हैं, एक अदृष्ट अर्थात जन्मांतरीय कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष और दूसरा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। अदृष्ट का अर्थ पूर्ण मंत्र तंत्र जन्य भी माना है। कहा भी है मंत्रानुष्ठान निष्ठस्य नेदिष्ठा कविराजता, जैसे श्रीहर्ष के विषय में कहा गया है तच्चिंतामणि मंत्र चिंतन फले काव्ये महाचारुणी इत्यादि, मंत्रानुष्ठान जन्म महाफल उनका नैषधीय चरित महाकाव्य है। और कहीं लोक शास्त्र व काव्यादि के अनुशीलन भी काव्य प्रतिभा का कारण माना गया है। इस प्रकार पंडित राज जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण माना और काव्य निष्ठा कार्यता निरूपित कारणता का अवच्छेदक प्रतिभात्व होगा। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में काव्य कारणता के विषय में सम्मिलित कारणतावाद तथा केवल कारणतावाद का कौतुक काव्य रसिकों के आलोचना चक्षु के लिए अत्यंत रमणीय आस्वाद तथा मननीय है। वस्तुतः कवित्व के आधार स्तंभ दो ही हैं, दर्शन और वर्णन। इन दोनों के परिपूर्ण होने पर ही सत कवित्व का उन्मेष होता है। दर्शन का संबंध आंतरिक प्रतिभा से और वर्णन का संबंध शब्दार्थ की समुचित उपस्थिति से है। वाल्मीकि महर्षि तत्वों के दृष्टा थे, परंतु जब तक उन्होंने अपने अनुभूत आंतरिक प्रतिभा ज्ञान को शब्दों के माध्यम से नहीं प्रकाशित किया तब तक उन्हें आदि कवि या महाकवि की महनीय संज्ञा नहीं प्राप्त हुई। क्रौंच पक्षी के निधन से उत्पन्न हुए करुण स्वर ने जब उनके कारुणिक हृदय को पिघला दिया तब उनका आंतरिक शोक ही मान निषाद प्रतिष्ठा त्वम गमः शाश्वती समा यत कौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम इत्यादि श्लोक में परिणत हुआ। इसलिए मौत की यह उक्ति भी सत्य ही है कि कवि ऋषि ही होता है, अन ऋषि नहीं होता। ऋषियों मंत्र दृष्टारः, अतः दर्शन व वर्णन ये दोनों कवि के मुख्य पाथेय हैं। काव्य का लक्षण लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि है। किसी भी वस्तु की सिद्धि लक्षण अथवा प्रमाण से होती है। इस नियम के अनुसार काव्य के प्रयोजन व कारण के निर्वचनांतर काव्य पद प्रवृत्ति निमित्त अर्थक या काव्य के व्यवहार के लिए उसके लक्षण का निरूपण करते हैं। तद दोष शब्दार्थ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, दोष रहित और गुण सहित कहीं कहीं अलंकारों से रहित भी शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। अर्थात काव्य शब्द और अर्थ के मंजू समन्वय में विराजमान है, जिस प्रकार अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का नित्य संबंध है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ भी काव्य में नित्य समभाव से रहते हैं। पर ये शब्दार्थ तीन विशेषणों से विशिष्ट होने चाहिए। क दोषों से रहित, ख गुणों से सहित, ग अलंकार रहित भी यदि कहीं कहीं हो तो क्षति नहीं है। एक रस के विघातक कतिपय प्रबल दोष जो रस के प्रतीति के प्रतिबाधक हो वे दोष काव्य में नहीं होने चाहिए। यद्यपि दोष सामान्य भाव या निर्दिष्ट काव्य सर्वथा दुर्लभ है, फिर साक्षात या परंपरा शब्दार्थ द्वारा जो दो उद्देश्य प्रतीति के प्रतिबंधक हो उन दोषों से रहित हो। दो गुणों की संपत्ति शब्दार्थ को गुणों से सहित युक्त होना आवश्यक है। काव्य के मुख्य तीन गुण हैं माधुर्य ओज और प्रसाद। ये गुण काव्य के आत्मभूत रस के नित्य धर्म हैं। रस के धर्म होने के कारण ही रस के साथ इनका साक्षात संबंध है और अप्रधान रूप से परंपरा ये शब्द और अर्थ में भी रहते हैं। जिन शब्द और अर्थ से काव्य संपन्न होता है उनमें गुणों की स्थिति आवश्यक है। तीन अलंकार की वैकल्पिक स्थिति काव्य जगत शब्द तथा अर्थ को सर्वथा अलंकार से युक्त होना बहुत जरूरी नहीं है, परिस्थिति विशेष में ही अलंकार की अपेक्षा है। इस प्रसंग में काव्य प्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार गोविंद ठाकुर ने अपनी प्रौढ़ टीका प्रदीप में एक मार्मिक टिप्पणी दी है, जिसका सार यह है। प्रदीपकार का कहना है कि चमत्कार सार ही तो काव्य है, और वह चमत्कार या तो रस के द्वारा अभिव्यक्त होगा अथवा अलंकार के द्वारा। जहाँ रस स्थिति है, वहाँ किसी अन्य अलंकार की अपेक्षा नहीं है। इस बात को स्वयं ध्वनिकार ने भी कहा है। निबंध का वाक्यार्थ जहाँ स्वतः रसानुकूल हो, ऐसी स्थिति में अलंकार की अनुपस्थिति में भी प्रबंध किसी अनिर्वचनीय विच्छित्ति को परिपुष्ट करता ही है। परंतु ऐसा स्थिति में जहाँ शब्दार्थ निरस हो, वहाँ भी यदि अलंकार न हो तो चमत्कार की अनुभूति कहाँ से होगी। इस स्थिति में स्फुट अलंकार को भी आवश्यकता है। इसलिए काव्य लक्षण में अनलंकृति पुनः पापी न देकर अलंकार की सामान्यतः वैकल्पिक स्थिति न रखकर स्फुट अलंकार सान्यतरत्वम यह विशेषण देना चाहिए, अर्थात शब्दार्थ के साथ केवल अलंकार वैकल्पिक स्थिति न देकर रस व अलंकार के विकल्प को रखना चाहिए था। उक्त लक्षण की कविराज विश्वनाथ कृत आलोचना। विश्वनाथ कविराज ने अपने साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ में मम्मट उक्त काव्य लक्षण की प्रतिपद आलोचना की है। दर्पणकार ने मम्मट के इस काव्य लक्षण को चिंतनीय बतलाया है। सर्वप्रथम उन्होंने अदोसौ इस विशेषण पर कटाक्ष किया है कि काव्य प्रकाशकार का यह काव्य लक्षण अव्याप्त है, अर्थात लक्ष्य के एक देश में संगत नहीं होता है, क्योंकि न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरयः इत्यादि ध्वनि काव्य के उदाहरण है। परंतु यही पर अयमेव न्यक्कार इस प्रकार पदों के परस्पर उद्देश्य विधेय भाव का विपर्य होने से विधेया विमर्श दोष है। फलतः उक्त दोष से दुष्ट होने के कारण आपका लक्षण यहाँ व्याप्त नहीं है, अतः आपका लक्षण अव्याप्ति दोष ग्रस्त है। इस प्रकार निर्दुष्ट काव्य का मिलना अत्यंत ही असंभव है। इसलिए काव्य के शब्दार्थ के लिए यह दोषाभाव की शर्त नहीं रखनी चाहिए। इसी प्रकार सगुणों का भी खंडन किया। विश्वनाथ का कहना है, जब गुण रस के धर्म है न कि शब्दार्थ के, तब काव्य तो सरस होगा ही। धर्मी रस की सत्ता में उसके धर्म गुणों की स्वतः सत्ता है। इसके लिए पुनः सगुणों यह विशेषण देना सर्वथा अनुचित है। जब रस की सत्ता शब्दार्थ नहीं रहे, उस स्थिति में शब्दार्थ के सगुण विशेषण आवश्यक है। इस तरह यदि समाधान किया जाए तो रस के अभाव में तो शब्दार्थ में काव्यत्व ही नहीं, फिर गुणों की चर्चा करना ही व्यर्थ है। अतः रसाभाव दशा में भी सगुण यह विशेषण उचित नहीं है। अनलंकृति पुनः क्वापि के ये उदाहरण में भूल। मम्मट ने अनलंकृति पुनः क्वापि का अर्थ किया है। सर्वत्र सालंकार शब्दार्थ काव्य है। यदि कहीं स्पष्ट अलंकार न भी रहे तो उस दशा में भी काव्य माना जाता है। जैसे यह कौमार हरहस एव ही वरस्ता एव चैत्र क्षपाह इत्यादि पक्ष में किसी स्वाधीन पतिका का यह कथन है। यहाँ प्राकृतिक सामग्री के सद्भाव में भी उत्कंठा की निवृत्ति नहीं हो रही है। इसमें विश्वनाथ का कथन है कि यहाँ विभावना तथा विश्व शक्ति दोनों अलंकार प्रतीत होते हैं। एक ही वाक्य में दोनों की स्थिति होने से उनके गुण विधान भाव में संदेह होने के कारण संदेह संकर स्पष्ट ही है। अतः मम्मट का यह कथन है कि यहाँ स्पष्ट अलंकार नहीं है, यह सरासर भूल है। इस प्रकार काव्य प्रकाशकार के ऊपर विश्वनाथ के आक्षेप आपाततः यथार्थ प्रतीत होते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि विश्वनाथ कोर्ट के कोई वकील हैं और मम्मट के ऊपर एक से एक पॉइंट पकड़कर बहस कर रहे हों और प्रतिपद दोषारोपण कर रहे हों। पर मम्मट की काव्य परिभाषा पर थोड़ा भी गंभीर चिंतन करने से विश्वनाथ को ये दलीलें कपूर की तरह उड़ जाती हैं। अदोसव का अर्थ है दोष रहित। शब्दार्थ काव्य के उपयुक्त हैं। यह दोष दो तरह के होते हैं, दोष सामान्य व दोष विशेष। दोष सामान्य के रहने पर भी यदि काव्य की आत्मा रस की प्रतीति में कोई बाधा नहीं आती है तो वे दोष सामान्य है, दोष नहीं माने जाते हैं। कुछ दोष विशेष होते हैं, वे रस दोष कहलाते हैं। यह शब्दार्थ निष्ठ ऐसे दोष हैं जो परंपरा अर्थात शब्दार्थ को दूषित करते हुए रस प्रतीति के भी विधातक हैं। ऐसे दोषों का परिहार काव्य में आवश्यक है। ऐसे ही दोषों का परित्याग ग्रंथकार को अभिष्ट है, अतः अदोष यह विशेषण सार्थक ही है। इसी तरह काव्य के लिए गुणों की संपत्ति भी आवश्यक है। गुण यद्यपि रस के धर्म है, परंतु स्वाश्रय व्यंजकत्व रूप परंपरा संबंध से वे शब्दार्थ में भी रहते हैं। यहाँ स्व शब्द से गुणों का ग्रहण होगा, उन गुणों का आश्रय रस है और रस के अभिव्यंजक शब्द और अर्थ हैं। स्वयं अमर्ट ने भी अष्टम उल्लास में कहा है, गुण वृत्त्या पुनस्तेषां वृत्ति शब्दार्थ योर मताः, अर्थात गौण रूप से वे गुण शब्द और अर्थ में भी रहते हैं। आनंद वर्धन का काव्य वृत्ति सदाश्रयात तथा कुंतक का सालंकारस्य काव्यता आदि वाक्य अलंकारों को उपलक्षक मानकर गुणों की ओर भी संकेत करते हैं। वामन ने तो साफ ही कहा है, विशेषों के गुणात्मा अर्थात काव्य में वह वैशिष्ट गुणों द्वारा ही है। रस जहाँ काव्य का अंतरंग तत्व है, वहाँ अलंकार व गुण शब्दार्थ को संस्कृत करने वाले बहिरंग तत्व हैं। किसी वस्तु के पूर्ण परिचय के लिए उसके अंतरंग व बहिरंग तत्वों का वर्णन सर्वथा आवश्यक है। आदि कवि वाल्मीकि ने भी इस सिद्धांत को पुष्ट किया है। लवकुश के द्वारा रामायण का गायन सुनकर वाल्मीकि का कथन है, अहो गीतस्य माधुर्य श्लोकानां च विशेषतः चीर निवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्। अहो इस गायन में विशेषकर श्लोकों में कितना माधुर्य है, वर्णन इतना रोचक है कि प्राचीन काल में होने वाली भी घटना प्रत्यक्ष के समान दिख पड़ती है। इस पद्य में माधुर्य गुण व भाविक अलंकार का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अलंकृति पुनः पापिक काव्य प्रकाशकार मम्मट द्वारा प्रदर्शित उक्त अस्फुट अलंकार के उदाहरण यह कौमार हरह इत्यादि पद में विभावना व विशेषोक्ति मूलक संदेह संकर की कल्पना कर जो आपत्ति विश्वनाथ ने दिखलाई है उसका निराकरण इस प्रकार है। यहाँ उत्कंठा रूप कार्य का वर्णन किया गया है, पर प्रकृति सामग्री की सत्ता में उसका कारण नहीं है, इसलिए विभावना है। ठीक इसके विपरीत जहाँ सब वस्तुएं उपभुक्त चर हैं, अर्थात कारण सामग्री विद्यमान है, पर उत्कंठा भाव रूप कार्य नहीं है, इसलिए विशेषोक्ति है और किसी एक अलंकार की स्वीकृति में साधक बाधक कोई सामग्री न होने से संदेह संकर है। विश्वनाथ ने विशेषोक्ति मूलक संदेह संकर माना है, परंतु ये अलंकार यहाँ भाव मुखेन नहीं अपितु अभाव मुखेन निकलते हैं, इसलिए वे स्पष्ट नहीं है, प्रत्युत बहुत खींचातानी से निकलते हैं। अतः अस्फुट अलंकार यह उदाहरण ठीक ही है। कुंतक की काव्य परिभाषा और वक्रोक्ति। आचार्य कुंतक के अनुसार सालंकार शब्द और अर्थ काव्य हैं। इनके मत में अलंकार काव्य का मूल तत्व है, वाह्य भूषण मात्र नहीं। काव्यत्व की स्थिति अलंकार और अलंकार शब्द अर्थ के अवयव रहित समस्त समुदाय में ही रहती है। काव्य मर्मज्ञों को आनंद देने वाली सुंदर कवि व्यापार युक्त रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें शब्द का संपूर्ण सौंदर्य और अर्थ के संपूर्ण चमत्कार दोनों का सम्यक सामंजस्य या विशिष्ट स्वभाव जहाँ रहता है वह काव्य है। पहले सरलतया काव्य की पहचान के लिए सालंकारस्य काव्यता कहकर पुनः काव्य व्यवहार के प्रयोजक लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। शब्दार्थों सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्य तद विदाहलाद कारिणी। काव्य मर्मज्ञों के आह्लाद कारक सुंदर वक्र कवि व्यापार से युक्त रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर काव्य कहलाते हैं। कुंतक की वक्रोक्ति की परिभाषा। प्रसिद्ध कथन से भिन्न विचित्र अभिधा अर्थात वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है, अर्थात वैदग्ध पूर्ण शैली द्वारा उक्ति ही है। वैदग्ध्य का अर्थ है विदग्धता, कवि कर्म कौशल उसकी भंगिमा या छटा अथवा शोभा उसके द्वारा उक्ति या वर्णन शैली का नाम ही वक्रोक्ति है। संक्षेप में इस पद में इसका स्वरूप दिखाते हैं। उभावेतावलंकार्योतयो पुनरलंकृति वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य भंगी भणिति कथ्यते। यह दोनों अलंकार्य होते हैं और चतुरतापूर्ण कथन प्रकार विशेष रूप वक्रोक्ति ही इन दोनों का अलंकार होती है, अर्थात विचित्राभिधान व्यापार रूप अलंकार ही वक्रोक्ति है। इसी से शब्दार्थ अलंकृत होते हैं। यही काव्य की आत्मा है, यह जीवन है। काव्य के विषय में विश्वनाथ का मत। विश्वनाथ कविराज काव्य के उपस्कारक ब्रह्म उपकरणों की उपादेयता के विषय में किंचित उदासीन से प्रतीत होते हैं, इसलिए इनका महान संरभ मम्मट के काव्य लक्षण के विशेषणों के खंडन के लिए रहा। यहाँ तक के वक्रोक्ति जीवितकार के काव्य जीवित के रूप में प्रतिष्ठित वक्रोक्ति को भी सहज रूप में अलंकार स्वरूप मानकर फिर उसके युक्त के लिए कोई प्रयास भी नहीं करते। ये काव्य के कला पक्ष से प्रभावित न होकर भाव पक्ष से प्रभावित हैं। इसलिए बाह्य झंझटों में पढ़कर काव्य के अंतस्थल का स्पर्श करते हुए वाक्यम रसात्मकम काव्यम रसात्मक वाक्य को ही काव्य का लक्षण मानते हैं। काव्य की आत्मा रस ही है। इस आत्मभूत रस के अभिव्यंजक वाक्य को काव्य कहते हैं। यहाँ रस शब्द व्यापक अर्थ में है, अर्थात रस से भाव रसा भाव भावाभास आदि रस के समीपवर्ती सभी भावनाएं गृहित हो जाती हैं। पर पंडित राज को विश्वनाथ का यह काव्य लक्षण अत्यंत संकीर्ण प्रतीत होता है। एक तो यह महाकवियों के विरुद्ध है, क्योंकि लक्ष्यानुसार लक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि काव्यात्मा जो ध्वनि है उसके वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि आदि जो महत्वपूर्ण अंग हैं, उनमें यह लक्षण अव्याप्त है। अतः काव्य के क्षेत्र में यह लक्षण अत्यंत संकुचित मालूम पड़ता है। काव्य के विषय में पंडित राज जगन्नाथ का विचार। पंडित राज जगन्नाथ काव्य में रमणीयार्थ के पक्षपाती हैं। उनका प्रख्यात काव्य लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य होता है। काव्य में शब्दों द्वारा प्रतिपादित अर्थ ऐसा हो जिसमें चित्त रमण करे, आनंद का अनुभव करे। इस रमणीयता का ही पर्यायवाचक शब्द चमत्कार भी है। यहाँ चमत्कार का अर्थ व्यापक है, अर्थात जो रमणीय रचना हृदय को प्रभावित कर उसमें अलौकिक चमत्कार या आनंद का संचार करती है, वह काव्य कहलाती है। पंडित राज जगन्नाथ ने भी काव्य प्रकाशकार के काव्य लक्षण की कड़ी आलोचना की है। इनका कहना है कि काव्य प्रकाशकार ने जो शब्दार्थों काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ को काव्य माना है, उस पर जरा विचार करना है। क्या काव्यत्व धर्म उभयनिष्ठ है? शब्द तथा अर्थ में व्यासज्य वृत्ति है, अर्थात शब्द अर्थ दोनों में रहने वाला धर्म है। अथवा प्रत्येक पर्याप्त, अर्थात शब्द में अलग काव्यत्व और अर्थ अलग काव्यत्व, इनमें पहला पक्ष अर्थात व्यासज्य वृत्ति वाला पक्ष नहीं बन सकता है, क्योंकि उस दशा में एको न द्वौ इस व्यवहार के समान यह श्लोक वाक्य तो है परंतु काव्य नहीं है, इस प्रकार का व्यवहार होने लगेगा। जैसे दो पदार्थों में रहने वाली द्वित्व संख्या दोनों में मिलकर ही रहती है, अलग अलग नहीं, इसीलिए द्वित्व संख्या उन दोनों पदार्थों का व्यासज्य वृत्ति धर्म है। जब दोनों पदार्थ उपस्थित होते हैं तब दो ये दो हैं, इस प्रकार का व्यवहार होता है, और जब उनमें से एक ही उपस्थित होता है उस समय यह दो नहीं एक है, इस प्रकार का व्यवहार होता है। इस प्रकार यह श्लोक वाक्य है, काव्य नहीं, यह व्यवहार होने लगेगा। अतः काव्यत्व को व्यासज्य वृत्ति नहीं माना जा सकता है। इसी प्रकार काव्यत्व को प्रत्येक पर्याप्त अर्थात शब्द तथा अर्थ में दोनों में अलग अलग रहने वाला धर्म भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उस दशा में एक ही श्लोक वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से दोहरा काव्यत्व आ जाएगा, इसलिए एक पद में दो काव्यों का व्यवहार होने लगेगा। अतः न तो व्यासज्य वृत्ति काव्यत्व बनता है और न प्रत्येक पर्याप्त, फलतः काव्यत्व शब्दार्थ उभयनिष्ठ धर्म नहीं है अपितु केवल शब्दनिष्ठ धर्म है। नागेश द्वारा मम्मट का समर्थन। रस गंगाधर के टीकाकार नागेश भट्ट ने अपनी रस गंगाधर की टीका मर्म प्रकाश में पंडित राज की युक्तियों का खंडन कर मम्मट के ही मत का समर्थन किया है। उनका उत्तर इस प्रकार है, काव्यत्व का प्रयोजक जो रसास्वाद व्यंजकत्व है वह शब्द तथा अर्थ दोनों में समान रूप से रहता है। काव्य पढ़ा यहाँ पाठ शब्द है, काव्य को समझा यहाँ बोध अर्थ का है। ये उभयविध व्यवहार लोक में देखे जाते हैं। अतः काव्यत्व को व्यासज्य वृत्ति धर्म अर्थात शब्द तथा अर्थ दोनों में मानने में कोई क्षति नहीं है। इसलिए चमत्कार बोध जन ज्ञान विषय यथावच्छेदक धर्मत्व रूप लक्षण शब्द और अर्थ दोनों में रहने से प्रकाशोक्त काव्य अनुपहसनीय है। काव्य के भेद। मम्मट ने काव्य के मुख्यतः तीन भेद माने हैं, एक ध्वनि काव्य, दो गुण भूत व्यंग्य काव्य तथा तीन चित्र काव्य। ध्वनि काव्य को ही उत्तम काव्य कहते हैं, जहाँ वाच्य से व्यंग्य अर्थ में अधिक चमत्कार रहे उसे उत्तम काव्य या ध्वनि काव्य कहते हैं। मम्मट के शब्दों में ध्वनि काव्य का लक्षण इस प्रकार है, इदमुत्तमती शाइनी व्यंग्य वाच्याद ध्वनिर्बुधय कथितः, अर्थात वाच्यार्थ की अपेक्षा जहाँ व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार रहे वह उत्तम काव्य होता है। विद्वानों ने इसे ध्वनि या ध्वनि काव्य कहा है। यहाँ ध्वनि शब्द के परिचय हेतु कुछ बातें आवश्यक हैं। साहित्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना आनंद वर्धनाचार्य ने की है। सर्वप्रथम वैयाकरणों ने स्फोट के अभिव्यंजक शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया था। उन्हीं की कल्पना को ग्रहण कर ध्वनि पंडित आनंद वर्धनाचार्य ने शब्द अर्थ शब्दार्थ व्यापार व व्यंग तथा व्यंग्य प्रधान काव्य में भी ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। वैयाकरणों ने केवल स्फोट रूप व्यंग के अभिव्यंजक शब्द के लिए ध्वनि का प्रयोग किया था। संक्षेप में वैयाकरणों की प्रक्रिया इस प्रकार है, स्फोट भाट वैयाकरणों का मुख्य सिद्धांत है। स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार है, स्फुटति अर्थो यस्मात् स स्फोट, जिससे अर्थ की प्रतीति हो। इन्होंने वाक्यार्थ बोध के लिए एक नित्य स्फोट की कल्पना की है। इस स्फोट की अभिव्यक्ति श्रोत ग्राह्य ध्वनि रूप शब्द से होती है। इसलिए जैसे वैयाकरणों ने अपने यहाँ प्रधानभूत स्फोट के अभिव्यंजक शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है, इसी प्रकार प्रधानभूत व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्द तथा अर्थ के लिए आनंद वर्धनाचार्य आदि ध्वनि पंडितों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य का उदाहरण, निशेष चित चंदन स्तन तटम निर्मृष्ट रागो धरो नेत्रे दूर मंजन जने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्या ज्ञात पीड़ा गमे वापिम स्नातुमितो गतांसी न पुनस्तस्याधमस्यांतिकम्। किसी विदग्धोत्तम नायिका की अपनी दूति के प्रति यह उक्ति है, जिसे उसने अपने नायक को बुलाने के लिए भेजा था, परंतु यह दूति स्नान कार्य के बहाने से अपने व नायक के संपर्क को छिपा रही थी। इसी के उत्तर में दूति के स्नान कार्य द्वारा उसके रहस्योद्घाटन को सुंदर शब्दों में कर रही है कि स्नान के ही कारण तुम्हारे स्तन के अग्रभाग का चंदन बिल्कुल छूट गया है, अधर की लालिमा भी लुप्त सी है, आँखों में अब अंजन भी नहीं है। अरि पर वेदना को न जानने वाली दूति, तू यहाँ से सीधे स्नान के लिए बावली को चल दी, उस अधम के पास नहीं गई। यहाँ वक्ता व बोधव्य की विशेषता से अर्थात रहस्य को जब दोनों जानती हैं, तब अधम पद की सहायता से लक्षणा शक्ति द्वारा वापी गमन का निषेध होने से दूती का नायक के पास जाना ही प्रधान व्यंग्य है। यहाँ वाच्यार्थ वापी स्नान की अपेक्षा व्यंग्यार्थ तदंतिक गमन रूप अधिक चमत्कार युक्त है। अतः यह ध्वनि काव्य या उत्तम काव्य का उदाहरण है। दो गुणीभूत व्यंग्य काव्य, मध्यम काव्य, जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त न हो उसे गुणीभूत व्यंग्य कहते हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्यते तु मध्यमम्, अर्थात वाच्य से अधिक चमत्कार व्यंग में न होने से गुणीभूत व्यंग्य नामक मध्यम काव्य कहलाता है। उदाहरण, ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनाथकरम पश्यंत्या भवति मुहुर्नितराम मलिना मुखच्छाया, किसी कारणवश संकेतिक स्थान में न पहुंच सकने के पश्चात आपका सुंदर वर्णन है। ग्राम तरुण के हाथ में नवीन विवेश मंजरी को हाथ में लिए हुए देखकर ग्राम तरुणी का मुख कुंभला जाता है, अर्थात उसके मुख की कांति मलिन हो जाती है। यहाँ यद्यपि संकेत करके भी निश्चित स्थान में नहीं जा सकी, यह व्यंग्य अंश है, पर मंजरी को देखते मुख मलिन हो गया। इस वाचार्थ का चमत्कार व्यंग्य की अपेक्षा कहीं अधिक होने से यह गुणीभूत व्यंग्य काव्य या मध्यम काव्य है, चित्र काव्य अथवा अधम काव्य, जिसमें व्यंग्यार्थ का अभाव हो या व्यंग्यार्थ अस्पष्ट हो, केवल शब्दालंकार या अर्थालंकार की प्रधानता हो, उसे अधम काव्य या चित्र काव्य कहते हैं। चित्र शब्द का अर्थ अलंकार है। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम त्वरम स्मृतम। व्यंग्य अर्थ से रहित शब्द चित्र या अर्थ चित्र दो प्रकार का होता है, को अधम काव्य कहते हैं। उदाहरण स्वच्छंदुच्छलदच्छकच्छकुहर छातेतराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नाना निकाहनाय बह विद्या दुद्य दुदार दर्दर दरी दीर्धा दरिद्र द्रुम द्रोहो द्रेक महोर्मी मे दुर मदा मंदाकिनी मंदताम। प्रस्तुत पद में कोई भक्त भागीरथी से प्रार्थना कर रहा है कि भगवती भागीरथी गंगा आपकी मंदता अर्थात अज्ञान को शीघ्र दूर करे। स्वच्छंद रूप से उछलती हुई निर्मल किनारे के कच्छ गह्वरों में अत्यंत वेग से प्रवाहित होने वाली जो जल की धारा है, उसमें आनंद पूर्वक स्नान व नित्य कृत्य करने वाले महर्षियों का मोह नष्ट हो चुका है, जिसमें बड़े बड़े मेढक दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे कंदरा है जिस मंदाकिनी में और प्रबल वेग के कारण जिसने अपने तटस्थ शाखा पत्रों से संपन्न बड़े भारी द्रुमों को गिरा दिया है। ऐसे उत्कट वेग वाली मंदाकिनी आपके अज्ञान या पाप को तुरंत नष्ट करे। यद्यपि इस पद में भक्त में रहने वाला मंदाकिनी विषयक पूज्य भाव प्रतीत होता है, तथापि वह अनुप्रास की छटा के सामने तिरोहित हो जाता है। प्रधानतया कवि प्रयत्न अनुप्रास की ही तरफ ही है, अतः यह शब्द चित्र का उदाहरण है। अर्थ चित्र का उदाहरण विनिर्गतम मानद मात्म मंदिराद भवत्युपश्रुत्य अदृच्छयापि यम स संभ्रमेन्द्र द्रुतपाति तारगला निमीलिताक्षीव भियाम रावती। शत्रुओं के मान को खंडन करने वाले और मित्रों को सम्मान देने वाले जिस हयग्रीव को बिना किसी उद्देश्य केवल भ्रमण के लिए अपने महल से निकला हुआ सुनकर स्वर्ग में इंद्र ने स्वयं नगर के प्रधान द्वार को अर्गल सहित बंद कर दिया। उस समय ऐसा मालूम पड़ता था मानो इंद्र की राजधानी अमरावती मारे भय के आंख मूंद रही हो। उक्त पद में यद्यपि हयग्रीव के प्रभावातिशय का वर्णन होने से वीर रस की अभिव्यक्ति हो सकती है। निमिलिता शिव भियामरावती इस उत्प्रेक्षा जन्य चमत्कार से वह वीर रस ओझलसा हो जाता है। मालूम पड़ता है कि कवि का सारंभ उत्प्रेक्षा की ओर ही अधिक था, अतः यह अर्थ चित्र का उदाहरण है। केचित चित्राख्यम तृतीयम काव्यमिच्छन्ति कहकर विश्वनाथ ने काव्य प्रकाशकार की तरफ संकेत किया है और स्वयं तृतीय काव्य चित्र काव्य में अरुचि प्रकट की और अपने पक्ष की पुष्टि में उन्होंने आनंद वर्धनाचार्य के प्रधान गुण भावाभ्याम व्यंग्यस्य एवं व्यवस्थिते उभे काव्य इत्यादि कारिका को उद्धृत किया है। पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य के चार भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं: उत्तमोत्तम, उत्तम मध्यम और अधम। प्रथम उल्लास समाप्त।